पहले। यह आज चौथा दिन है। तुमने एक नीम मुर्दा जवान को कुएं से निकाला था, है ना?
मैं सूखे कुएं के पास पहुंचा, पोल्ट्री फार्म के पास, मगर वो पोल्ट्री फार्म धूं धूं करके आग में चल रहा था। फायर ब्रिगेड की पानी की बौछार, आदमियों की कोशिश, महशर बरपा था। अचानक बाबा की आवाज कुएं से आने लगी। भेड़ उस बेहोश पर जा गिरी थी जिसके चेहरे और बदन से खून बह रहा था।
मगर चार दिन पहले तुम्हारे उस पोल्ट्री फार्म के सामने वाले सूखे कुएं में से एक नीम जान जवान को निकाला गया है, एक 30-32 साला नौजवान को, उसी रात को जब आग लगी थी।
ये फरजीन भी था?
तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना जो हमारे काम आ सके?
मैं नहीं। पुलिस पोल्ट्री फार्म आई थी, ये तय नहीं था कि इस कदर मामला संजीदा हो जाए। था क्या? क्यों था ऐसा याकूत? आखिर मेरे बारे में क्या सोचा था?
अहमद रजा बाबा यही है ना?
हाँ, जाइए जनाब, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है।
जिंदा बचेगा या नहीं? नहीं, मेरा मतलब मैं जानना चाहता हूँ वो बचेगा या नहीं।
बाबा उस्ताद सलाम, आपका नौकर हूँ, आपका खिदमतगार हूँ, आपका गुलाम हूँ।
उसको देखा?
तुम मेरे शौहर को जानते हो? उनके जिंदा होने या ना होने के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुक जाओ। वो आदमी जिससे कुछ देर पहले तुम बात कर रहे थे और जो गाड़ी में बैठकर चला गया, वो कौन था?
परदे याकूत।
कौन?
नौरोज खान की सीढ़ियों पर सिलाई का काम होता है।
तुम मेरे शौहर को जानते हो?
आखिरी मर्तबा बात करूंगा।
मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर तुम मामले के बीच में नहीं हो तो बता दो, जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है। उसके बाद जो शिकस्त होगी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा
और हमेशा हमेशा के लिए नापायद हो जाऊंगा। मैं आज की रात तुमसे राब्ता कायम करूंगा, अगर फोन उठाकर जवाब दिया।
इसका मतलब यह है कि अपनी बात पर कायम नहीं हो? अगर अभी की तरह फोन उठाकर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह होगा कि अपनी बात पर कायम हो।
रोया भाई घर?
रोया अभी घर नहीं आई है, फिलहाल आप थोड़ा आराम कर लें। आप रुके, मैं जाता हूं। हेलो समसामी अंकल, सलाम। डैड आपकी तरफ निकले, बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। क्या हुआ?
इस मर्तबा पता भी है।
उठिए।
मुझे इस पते पर जाना होगा, इस खेल पर से पर्दा हटाना होगा।
जब एक नामालूम गुमनाम शादी कार्ड आता है जिस पर एक पता लिखा होता है तो ये फिक्री बात नहीं है, यानी खतरनाक है। फिर आप क्यों जाएंगे? पुलिस को फोन करेंगे?
पुलिस को जाकर बताऊं कि शादी कार्ड आया है?
आखिर ये शादी कार्ड दूसरे शादी कार्ड से अलग है।
क्या फर्क है?
ये सब एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। आईने पर उन आंखों का चिपकाना, क्या पता ये शादी के दो कार्ड जो आए हैं, मकबरे में रोया की कब्र बनाना, उस पर रोया का नाम लिखना।
कब? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
इसलिए कि आप बहुत ज्यादा परेशान थे और ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अभी चलते हैं पुलिस के पास, ठीक है?
नहीं, आइंदा से मैं तुम्हारी जुबानी उन आंखों के बारे में कुछ ना सुनूं और ना ही तुम किसी को बताओगे।
क्यों?
सवाल नहीं, कहो बहुत अच्छा।
जिद्दी, बहुत जिद्दी। डैड, आपने मुझे थका दिया। शायद कब्र बनाने वाला और कार्ड भेजने वाला एक ही आदमी हो।
क्यों एक आदमी, दो आदमी क्यों नहीं? चलो मान लेते हैं एक आदमी, मुहर्रिक और फायदा।
मेरे डैड का सुकून छीनना हो सकता है?
तुम्हारे हिसाब से कौन चाहता है तुम्हारे डैडी का सुकून छीनना?
नहीं जानता।
अहमद रजा बाबाई के मिल जाने के बारे में क्या? उसके मिलने से तुम्हारे डैडी का सुकून वापस मिल जाएगा क्या?
मेरे डैड सिर्फ मेरी माँ के साथ पुरसुकून थे, अलबत्ता उसूली तौर पर वो पुरसुकून है नहीं।
नहीं, ये आपका दाखिली मामला है। सिर्फ वही आदमी आपके जाती मकबरे में जा सकता है और कब्र तैयार कर सकता है जो आपकी बहन को जानता हो और उनके नाम को जानता पहचानता हो। वो आप में से ही कोई हो सकता है।
अब चूंकि ये हमारा जाती मामला है, क्या आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे?
जाहिर है कि मैं जांच पड़ताल करूंगा, उस खबर का जायजा लूंगा, बहिश्ते जहरा की रिपोर्ट देखूंगा, पुलिस की रिपोर्ट देखूंगा। ये बताएं कि कोई गैर मतलूबा शादी का तालिब या आपकी बहन का कोई ख्वाहिशमंद जिसने नाम जवाब सुनने के बाद ये सब हरकतें की हों?
ख्वाहिशमंद क्यों नहीं, कावे।
कावे?
आपके कहने का मतलब यह है कि यह उसका काम है?
आप खुद इस सवाल का जवाब दें।
कावी डैड की रजामंदी हासिल करना चाहता है, जिससे कि वो मेरी बहन से शादी कर सके।
ओ, तो क्या उसकी कब्र बनाकर तवज्जो हासिल करना चाहता है? अगर ऐसा है तो उसको मुल्ज़िम करार देना मंतिकी है।
जी,
ये जो कोई भी तुम्हारे वालिद का सुकून छीनना चाहता है, उसे क्या फायदा मिलेगा?
कुछ भी नहीं, उसकी कोई वजह नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए कह सकूं कि सही है या गलत। मैंने ना किसी चीज की तायद की और ना ही झुटलाया है।
मैं तो सिर्फ उन चीजों को जो सामने हैं दोहरा रहा हूं।
क्या उस पर शक करने की वजह है? कावे पर, तुम्हारे डैड के डूबे हुए पैसों पर उसका कोई हाथ हो?
नहीं, उसने मेरे डैड के नजदीक अपना इम्तिहान साबित कर दिया है।
ये पोल्ट्री फार्म हाउस की रिपोर्ट है।
अच्छा,
बिल्कुल साफ साफ, पता ठिकाना सब लिखा हुआ है।
मैं अभी उस पते को लेकर परेशान हूं, कहीं डैड किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं।
मैं जा रहा हूं ताकि कोई हादसा ना हो।
क्या मैं भी आ सकता हूं?
फरमाइए।
हाल किस मंजिल पर है?
तीसरी मंजिल पर तशरीफ ले जाइए।
अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद, फरमाइए। मैं आपकी खिदमत में हूं, क्या शादी का कोई प्रोग्राम है? ये तो सिर्फ पता है।
यहां का पता लिखा है?
जी हाँ।
क्यों, तुम्हें नहीं मालूम ये मुझे किसने भेजा है?
मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब तक इस तरह के दो कार्ड मेरे घर पर आ चुके हैं, मेरे घर फेंक कर चले जाते हैं लोग।
सलाम, माफ करना मुझे आपकी फिक्र थी।
पुलिस को आप अजनबी समझते हैं जनाब शाइस्ता?
मैं सिर्फ अपने घर वालों को अजनबी नहीं मानता इंस्पेक्टर साहब।
तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया, अहमद रजा बाबाई पर?
जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बेवकूफी को हर घड़ी दोहराता रहूं।
इस एड्रेस से आपको क्या हासिल हुआ?
कुछ नहीं।
क्या मैं भी अपना नसीब आजमा सकता हूं? अपने कस्टमर की लिस्ट दिखाएं जरा मेहरबानी करके।
लीजिए।
बुशगानी, जारई, पर्दा याकूत और सालियान, ये उन लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने आइंदा दो महीनों के लिए शादी हॉल बुक किया है। क्या इनमें आपकी पहचान वाला कोई है?
नहीं, कोई भी नहीं। लगता है आज तुम्हें भी कामयाबी नहीं मिली इंस्पेक्टर, फहरिस्त ज्यादा काम नहीं आ सकी।
मैं अपनी खुदा रहमत करे दादी की तरह हूं, हम लोग उन्हें बीबी कहा करते थे। वो कभी भी कोई चीज़ फेंका नहीं करती थी, कहा करती कोई भी चीज़ कभी भी मौके पर काम आ सकती है। क्या आपकी दादी ऐसी नहीं थी?
नहीं, नहीं थी। इंस्पेक्टर, अपने दिल में कुछ न रखो, जो कुछ निगाहों में है कह दो।
अहमद रजा बाबाई के जाहिर हो जाने से किसको फायदा होगा और किसको फायदा नहीं होगा? आप इन दोनों में से किसका इंतखाब करते, ये कि अहमद रजा मिले या ना मिले?
जो कोई पुरअसरार सवाल करता है वो जवाब भी जानता है, क्यों?
नहीं, हमेशा नहीं। उस वैनेट ड्राइवर को जिसने आगजनी की रिपोर्ट दी थी बुलाया?
कल सुबह ऑफिस में हाजिर हो जाएगा जनाब। कुछ वक्त से आपको बिल्कुल सुकून नहीं है।
कैसे?
जब से अहमद रजा बाबाई का सुराग मिला है दूर से मैं आप पर नजर रखे हुआ हूं। बस अपने आप से बातें करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं।
हाँ, बातें करता रहता हूँ, कड़ियाँ जोड़ता रहता हूँ, बिल्कुल उस मेमार की तरह जो ईंट पर ईंट रखता और इमारत बनाता जाता है। इस फाइल का भी यही हाल है, बिल्कुल सही तफ्तीश होनी चाहिए। बाबाई मिल गया है, ठीक है, शाइस्ता भी अपनी जगह मौजूद है, तो पैसा कहाँ गया? बाबाई कुएं के अंदर से कैसे मिलता है? इन पैसों को लेकर वो भागा क्यों नहीं? उसको किसने मारा? किन लोगों ने मारा? कुएं के अंदर किसने फेंका? किन लोगों ने फेंका? अगर मकसद जान से मारना था तो फिर इस तरह क्यों नहीं मारा कि बिल्कुल सुराग ना लगाया जा सके? वो 8 अरब रुपए जो सोने के बिस्किट में बदल चुके हैं अभी कहाँ हैं? अगर बाबाई
कितने सवाल हैं।
हाँ, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूं।
मेरे शौहर की हिफाजत फराहम क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये जरूरी है कि जब कोई हादसा हो जाएगा तभी आप लोगों की सूरत देखने को मिलेगी? किसी भी अजनबी को यह हक हासिल नहीं है कि अस्पताल जाकर मेरे शौहर का हाल दरियाफ्त करे, समझे? जवाब क्यों नहीं देते? मत दे जवाब। मैं जा रही हूं आपके अफसर के पास, उनको अपने मातहत अफराद की लापरवाही का जवाब देना होगा। मैं माफी चाहती हूं।
कोई बात नहीं, क्या हुआ मोहतरमा बाबाई? आप उस कारखाने में बेहोश कैसे पाई गई? आप वहां कर क्या रही थी?
अजनबी लोगों की नजर मेरे शौहर पर है, उनका आना जाना ज्यादा है। वो आकर जिंदा या मुर्दा होने की खबर लेते हैं। उन्हीं में से एक के पीछे मैं गई। मैंने पूछा कि मेरे शौहर के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल भागा। उसका पीछा किया और जगह का पता चलाया। वो अपनी पैदावारी यूनिट में था जो कि उसी आदमी की है। उसका नाम पर्दा याकूत है।
शादी का हाल? हाल, चलो। पर्दा याकूत के घर का पता, बड़ा मेहरबानी।
चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है कारखाने को, क्या मुसीबत मोल ले ली हमने।
तुमको कुरान का वास्ता, जहां छुपना चाहो मुझे भी अपने साथ ले जाना। देखो मैंने अब तक इस तरह की गलत हरकत नहीं की थी, अब मैं कैसे खुद को संभालू तुम्हें बताओ।
तो क्या मैंने ऐसा किया था? तो क्या मैंने ऐसा किया था? खा मखा की मुसीबत मैंने मोल ली।
सलाम।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी।
तो फिर आओ, हम लोग अकेले पड़ गए हैं।
उसको बताया?
नहीं बाबा, डर लगता है कहीं देर ना हो जाए।
डैड चलें। डैड, आपने इंस्पेक्टर सादकी की बात का जवाब नहीं दिया।
किस बात का जवाब?
यही कि अहमद रजा बाबाई के मिल जाने के बाद आपको फायदा होगा या नुकसान, आप खुश हुए या नहीं।
अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ एक गोश्त का लोथड़ा मेरे किस काम का? क्या मेरी नीलाम होती जिंदगी को रोक पाएगा? कर्जदारों के लिए पैसे का काम कर सकता है?
अगर मर नहीं गया तो? अंकल शमसामी का फोन है।
बोलो, अभी रोया को लेने आ रहे हैं।
आप नहीं, अगर इजाजत दें तो मैं खुद जाऊंगा। आपसे दरखास्त है, ठीक है? शुक्रिया। सलाम अंकल शमसामी, मैं ठीक हूं। एक बात हो गई है जो आकर मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं ही आऊंगा। खुदा हाफिज।
सलाम मामू। मैं खोलता हूं।
सलाम जनाब। मुझे याद है एक मरतबा एक आदमी पर आपका उधार था और उसने वो पैसा डुबो दिया था। मैं उसे वसूलने गया था, वो काम मैंने किया था। उसने वो पैसा गिना और मुझे दे दिया। मैं आपके पास आया, आपने भी पैसा गिना और अपने पास रख लिया। रकम पूरी थी, सिर्फ 150 कम था। सिर्फ 150 तुमान, सिर्फ 150 तुमान के लिए आपने मुझे मजबूर किया और कहा कि जाओ और वो 150 तुमान लेकर आओ। मैंने आपको बहुत समझाया, जनाब ये अच्छी बात नहीं है, आपने कहा जाओ अपना काम करो। मैंने कहा मुझे शर्म महसूस हो रही है कि 150 तुमान के लिए वहां जाऊं। आपने कहा तिजारत का अलग असूल है और जिंदगी का अलग असूल है, अगर जिंदगी में शर्म महसूस करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। याद है ना जनाब, अगर मैं यहां दोबारा वापस आया हूं तो उसी असूल की वजह से। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को किसी मकाम तक पहुंचाऊं, न कि शर्मिंदगी महसूस करूं। मैं वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, बस आपकी इजाजत लेने आया हूं बिना किसी खौफ के।
नसीहत मुझे याद है, अगर किसी को याद नहीं तो वो तुम हो। तुमको अपना वो 5 साल का बचपना याद नहीं। जब 5 साल के हुए तो मैंने कहा अच्छी शक्ल व सूरत का लड़का है, मगर जब ये पता नहीं कि बाप कौन है मां कौन है तो कैसे पता चलेगा कि किसकी शक्ल पर गया है। ठीक है, जब तुम 6 साल के हुए तो तुम्हारा नाम मैंने रखा कावे। उसके पहले सब तुमको ओ के नाम से पुकारते थे, याद है? जब तुम 12 साल के हुए तो देखा कि बाबक के दोस्त बन गए हो, इसलिए मैंने तुमको उससे अलग करके कहा खूब अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि जब मेरे घर वालों के साथ चल रहे हो तो जान लो कि तुम भी वही गोश्त और मुर्ग खाते हो जो वो लोग खाते हैं, मगर तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो। मैंने कहा रोजाना 18 मरतबा इस बात को दोहराओ, याद है? नहीं, याद नहीं है। मैंने एक जगह तुम्हारी सरपरस्ती में भूल कर दी, जो बातें जिंदगी में सिखाई थी वो तुमको याद नहीं होंगी। याद नहीं रह गया इसलिए अपनी हद से गुजर रहे हो बच्चे। बच्चे मेरी जिंदगी के सभी लम्हों में ध्यान मेरा घर वालों पर रहा है। एक बात समझ लो, अगर सिर्फ पैसों की खातिर होता तो मेरे पैर अदालत तक नहीं उठते, समझे? से हजार साल बाद के लिए भी तुम्हें अपने घर वालों के आसपास न देखूं। अगर देख लिया तो तुम्हारे ऊपर से इस तरह गुजर जाऊंगा कि तुम्हारे वजूद का भी पता नहीं लगेगा। उम्मीद है तुम ये बात याद रखोगे।
आज दोपहर को एक बार फिर आपकी बेटी की तरफ से इत्मीनान हासिल करके यहां आया हूं। ये रही गाड़ी की चाबी जो आपने मेरे लिए खरीदी थी, ताकि घर वालों को लाना ले जाना कर सकूं। ठीक है, बहुत अच्छा जनाब शाइस्ता, अब आपके घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आऊंगा।
ठीक है,
बस इतना ध्यान रहे कि मैं रोया को आप या आपके खानदान में शुमार नहीं करता हूं। आप में जितनी ताकत है लगा लें
मुझे रौंदने और मिटाने के लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा।